तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता।
ओम शांति। आज के इस साइंस के युग में विशेष शरीर की हेल्थ के लिए पूरी स्कैनिंग करवाते हैं, कहीं पर कोई सूक्ष्म छोटी मोटी गांठ तो नहीं है, सब कुछ अंदर बाहर ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं साल में एक बार फुल चेकिंग होनी चाहिए। तो आज भी हम यहाँ पर अपनी अपनी स्कैनिंग करेंगे, खुद ही करना, लेकिन एक मिनट के लिए सभी इस देह से निहारे बनकर अपने इस भ्रकुटी आसन पर बैठो। सभी बैठ जाओ, एकदम मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक, मैं आत्मा एक राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी स्टेज में इस देह से डिटैच हूँ, इसका अनुभव करो। अभी मैं आपके आगे कुछ प्रश्न देता हूँ, सभी लिखना, पहले प्रश्न लिख लो और फिर उसके बाद जो एक प्रश्न दे रहा हूँ उसको दो मिनट सोच करके उसका उत्तर लिखना, ठीक है। वर्तमान समय इस शरीर के अंदर सबसे आवश्यक अंग कौन सा है? आंखें। बाबा ने हम बच्चों की आंखों का ऑपरेशन किया है, किया है सबकी आंखों का ऑपरेशन, जो देह को देखने की आदत थी, देह के रंग रूप, किसी की वैभव, किसी की जाति, किसी का धर्म देखने की आदत जो थी, बाबा ने उसका परिवर्तन किया, ऑपरेशन कर दिया। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेरी दृष्टि कैसी है? दृष्टि में रूहानियत दिव्यता आई है? परसेंटेज लिख सकते हैं, क्योंकि 100% कोई एकदम कहे मैं सिविलाइज्ड हो गया हूं, मैं तो आत्मा को ही देखता हूँ, देह दिखाई नहीं देती मुझे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए अपने जब से ब्राह्मण जीवन बनी है, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, तब से अब तक मेरी दृष्टि के अंदर कितनी स्वच्छता, कितनी पवित्रता, कितनी निर्मलता, कितनी रूहानियत, कितनी दिव्यता आई है? प्रश्न है ये, सभी लिख रहे हैं ना, चेक करो। लिख लिया सबने? फिर से रिपीट करने की जरूरत है? रूहानियत दिव्यता स्वच्छता पवित्रता अलौकिकता दृष्टि में कितनी आई है? लिखो, परसेंटेज लिखो, 50 है, 60 है, 40 है, या अभी तक भी बार बार दैहिक दृष्टि बन जाती है, 20 है, 10 है, या 80-60 तक पहुंच गए हैं। हर एक अपने मार्क्स दो, खुद ही अपने आप में। सोच के देना, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, ये अंदर की बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, विकारी हो जाती है, भावनाएं चेंज हो जाती, बहुत कुछ होता, दृष्टि वृत्ति की कंप्लेन बहुत रहती है। इसलिए अंदर जा करके मैं बाबा का सच्चा बच्चा हूँ, मैं अपनी सच्चाई से स्कैनिंग करूँ कि सचमुच मेरी दृष्टि में कितनी स्वच्छता, कितनी पवित्रता, कितनी निर्मलता आई है। दूसरा प्रश्न दो। मेरा दृष्टिकोण अपने प्रति, परिवार के प्रति, ईश्वरीय परिवार के प्रति, लौकिक परिवार, ईश्वरीय परिवार और बाबा के प्रति और लोगों के प्रति, मेरा दृष्टिकोण माना मेरी वृत्तियां, देखने का नजरिया किस प्रकार का है? बहुत श्रेष्ठ है, शुभ है, व्यर्थ है, साधारण है, निस्वार्थ है, निर्दोष है, अनासक्त है? प्रश्न करते जाओ अपने दृष्टिकोण के ऊपर, मेरा दृष्टिकोण कैसा है, मैं किस भावना से बाबा के पास आता हूँ, क्या मेरा लक्ष्य रहता है, बहुत कुछ अंदर चेक कर सकते हो इसके अंदर। मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरी वृत्तियों में क्या है, मैं बाबा के पास आया, मेरा कोई स्वार्थ है, मेरे अंदर कोई दोष दृष्टि है, मेरा कोई लेना देना है, किस लिए मैं आया? तो अपने दृष्टिकोण को बहुत गहराई से चेक करें, सूक्ष्म वृत्तियां पता चलेंगे, अनासक्त हैं, निर्दोष हैं, निस्वार्थ हैं, सबके प्रति शुभ हैं, रहम की हैं, हो गए जी। परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज लिखो, अगर आप समझते हो मैं बिल्कुल अनासक्त हूँ, कोई मेरा किसी से बैर विरोध नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष दृष्टि सबके प्रति रखता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो 100% भी लिख सकते हो। अगर है परसेंटेज दिखाई देती है तो परसेंटेज में लिखो, अपनी स्कैनिंग करनी है हमको, और कोई को नहीं देखना है, मैं कैसा हूँ। तीसरा प्रश्न, मेरी स्मृतियों में क्या है? स्मृति, बहुत पास्ट की बातें बार बार याद आती हैं, कोई के साथ कोई घटना घट गई, कोई गलत काम हो गया, कोई उल्टे काम हो, वही बार बार आते हैं, वो पीछे की बातें स्मृतियों में रहती हैं, या भविष्य का चिंता ज्यादा रहती है, या बाबा के सिवाय मुझे और कोई स्मृति नहीं है, बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई, स्मृति में मेरे क्या है? कई पास्ट की बातों को भुलाना चाहते हैं लेकिन भूलती नहीं है, बार बार वही बात परेशान करते रहते, हाय मेरे से ऐसा हो गया, हाय मेरे कब क्यों किया, कैसे किया, तो वो स्मृतियां बार बार तंग तो नहीं करती हैं? कौन सी ऐसी स्मृति जो मुझे परेशान करती है, वो स्मृति याद करके लिखो, लिख डालो, बाबा को दे दो आज, बाबा आज तक मेरे अंदर मैंने ये जो कर्म किया था उसकी स्मृति बार बार आती है। बहुत सूक्ष्म जाओगे तो पता चलेगा, नहीं तो स्मृतियों की याददाश्त इतनी नहीं रहती है। लेकिन कई बार 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 स्वप्न में चलते फिरते जब योग में बैठते हैं, कितने जन्मों के पीछे की बात, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल पीछे की बात अभी याद आ रही है। मेरे से ऐसा हुआ था, मेरे साथ इसने ऐसा किया था, वहाँ ऐसा हुआ था, मेरे साथ झूठ बोला, मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो वो बात बाबा कहता परेशान करती। इसलिए उसको स्मृति को चेक करो कि मेरी स्मृतियों में क्या है, बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा की पढ़ाई, अपना भाग्य, यही स्मृति में है या पास्ट के ऐसे चिंतन भी स्मृति में है। अभी बोल के ऊपर चेक करो। चौथा प्रश्न, सारे दिन में मैं कितना व्यर्थ बोलता हूँ, कितना समर्थ बोलता हूँ, मेरे बोल के अंदर मधुरता, मेरे बोल के अंदर अलौकिकता, मेरे बोल के अंदर किसी को आगे बढ़ाने की भावना, सुख देने वाले बोल, यथार्थ बोल कितने निकलते हैं, सब चेक करो। व्यर्थ बोल की परसेंटेज और समर्थ बोल की परसेंटेज कितनी कितनी है। अधिक बोलने की आदत तो नहीं है, या एकदम चुप हो जाने की आदत तो नहीं है, दोनों आदतें खराब है। कई एकदम अंदर अंदर ले करके एकदम गुम हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, उनका भी पता नहीं चलता क्या है, और कई बोलते हैं तो इतना बोलते हैं जो दूसरे का दिमाग खराब कर दे। देखो अपने बोल को, मेरे पास बोल की शक्ति बहुत बड़ी एनर्जी है, ये कितनी व्यर्थ जा रही है, कितनी समर्थ है। बाबा कहते हैं सुखदायी बोल, आवश्यक बोल, मधुर बोल, धीरे से बोल, कम बोल, बोल के ऊपर बहुत बाबा की मूल्यां चली हैं। बोल से ही सब संबंध बिगड़ रहे हैं, बोल से ही टकराव हो रहे हैं। बोल पर अगर ध्यान है तो ब्राह्मण जीवन का बड़ा आनंद ले सकते हो। इसलिए अपने बोल को हर एक चेक करो। चेक करना माना चेंज करना, सिर्फ चेक नहीं करना, प्रतिज्ञा करना साथ साथ कि बाबा अभी तक मेरा 50% व्यर्थ बोल जा रहा था, आज मैं भट्टी में संकल्प लेता हूँ, मैं अपने मुख से एक भी बोल किसी को नहीं ऐसा बोलूंगा जो अपसेट हो जाए, मैं डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं बोलूंगा, अपसेट होने वाले बोल नहीं बोलूंगा। तो ऐसे संकल्प भी करो साथ साथ, बोल को बहुत गहराई से चेक करो। छठा है कर्मों को चेक करो, कर्म कैसे हैं मेरे, जब से मैं बाबा का बना हूं ये कर्म में दिव्यता है, अलौकिकता है या साधारणता है। 5 नंबर कर्म, 5वां नंबर कर्म, सुखदायी कर्म है, जो कर्म मैं करता हूं लोगों को सुख मिलता है, जो कर्म मैं करता हूं उससे गुणों का दान हो रहा है, जो कर्म मैं कर रहा हूँ मुझे उसको देखकर जो फॉलो करे उसका जीवन बन जाए, ऐसे मेरे कर्म हैं। कर्म कैसे हैं? कर्म करने के बाद मुझे उसका अभिमान तो नहीं आता है, मैं कर्म को बाबा के आगे समर्पित कर देता हूँ, या मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता तो कैसे होता, मैंपन तो नहीं है। चेक करो कर्म को, जो कर्म कर रहे हो, चाहे भंडारे का काम कर रहे हो, चाहे कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, काम तो सब करता है, कर्म संन्यास तो ही नहीं। चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना, ये सब कर्म है। उस कर्म से लोगों को प्रेरणाएं मिल रही हैं या कर्म देख करके कोई क्वेश्चन उठा रहा है, ये योगी, ये ज्ञानी, ये ब्रह्मा कुमार ऐसा करता है, ये भी ऐसे करता है, ये भी ऐसे बोलता है, ये भी ऐसे चलता है। तो चेक करो अपने कर्मों को, क्या मेरे कर्म हर एक के लिए प्रेरणादायक है? मेरे कर्म से लोगों को सुख महसूस हो रहा है? मेरे कर्मों से गुणों का दान हो रहा है? मेरे कर्म कैसे हैं? इन सब के आधार से छठी बात चेक, मेरी स्थिति कैसी है? बहुत जल्दी जल्दी नीचे ऊपर तो नहीं हो जाती, हलचल में तो नहीं आ जाता हूं? क्या मेरी मूड एक रस है? फीलिंग का फ्लू तो नहीं आता है? अचल हूं, अडोल हूं, एक रस हूं, स्थिर हूं, कोई भी पेपर आ जाए मैं पार कर सकता हूं, ऐसी मैंने अपनी स्थिति जमाई है? सारी पढ़ाई का मेन बिंदु स्थिति, अचल, अडोल, एक रस हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो छठा प्रश्न चेक करना, स्थिति मेरी कैसी है? कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कभी कुछ हो गया, फौरन मेरा डिस्टर्ब हो जाए माइंड, फौरन मैं अपसेट हो जाऊं, फौरन मेरी खुशी गायब हो जाए, या मेरी बस एक रस मूड है, एक रस स्थिति, होने दो जो हो रहा है, अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो चेक करो स्थिति कैसी है। ये जीवन के दर्पण में हरेक को रोज ये 6 बातें चेक करनी है, ठीक है? जीवन का दर्पण है ये, और अगर इसमें आप मार्क्स बढ़ाते जाएंगे ना 6 बातों में, तो एक दिन आपको वो स्थिति मिल जाएगी जैसे बस बाबा की स्थिति ना, जैसे प्लेन जब उड़ करके अपनी उड़ने की स्पीड पकड़ लेता है तो क्या होता है, हिलना डुलना बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता चल रहा है या नहीं चल रहा है, कितनी स्पीड में जा रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब तक वो चढ़ाई चढ़ रहा है तब तक कहते बेल्ट बांध के रखो, हिलेगा डुलेगा पता नहीं क्या होगा, इसलिए पकड़ के बैठो, ठीक बैठो, अलर्ट होके बैठो, सीट सेट करके रखो, और जब ऊपर चला गया स्पीड पकड़ ली तो एक रस। तो ऐसी स्टेज बनी है, एक रस, अचल, अडोल, मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे, या अभी भी डाउन होते रहते, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बीच बीच में बादल आते हैं नीचे ऊपर कर देते हैं। अभी 4 प्रश्न है निश्चय के, निश्चय में सबसे पहला प्रश्न स्वयं के विषय में पूछो, मेरा स्वयं में कितना विश्वास है कि मैं एक विजयी आत्मा हूं, मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, मैं ही देवता था अब फिर से मैं बनना है, मुझे ही बनना है, मैं ही पूज्य और पूर्वज हूं, स्वयं में कभी भी ये तो नहीं आता ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा असंभव है, मैं कैसे बनूंगा, मेरे अंदर तो ये संस्कार हैं, मेरे अंदर तो ये संस्कार हैं। कमजोर संस्कारों पर बार बार ध्यान जाता है या अपने वो आदि और अनादि संस्कार इमर्ज रहते हैं। मैं बना था, बनूंगा, बाबा मुझे बना करके ले जाएगा, ये निश्चय है, संपूर्ण निश्चय है, तो विजय हुई पड़ी है। पहले अपने स्वयं के निश्चय को देखो, सचमुच मेरा अपने ऊपर फेथ है, मेरा अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास है कि मैं ही तो बना था, मुझे ही तो बनाने बाबा आया है, मैं बन के दिखाऊंगा। तो कलप कलप का मैं विजयी रतन हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मुझे संपूर्ण निश्चय है। वैसे निश्चय में परसेंटेज नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें परसेंटेज लिख सकते हो। कई लोग थोड़ा डाउन होते रहते हैं, अप डाउन, ये होना नहीं चाहिए इसके अंदर। सत्य वचन महाराज, सुनो ये शब्द, पहले सुन लो फिर लिखना। सत्य वचन महाराज माना शिव बाबा के जो वचन मुख से निकले हैं मुरली, वो सत्य वचन है और उसी अनुसार मैं उसका पालन कर रहा हूँ, उसको ग्रहण कर रहा हूँ, उसमें कभी भी मेरा रिक्चक भी कोई क्वेश्चन नहीं उठता। जो कुछ बाबा ने कहा अंधश्रद्धा नहीं, ये सत्य है, इतना मेरा अटूट निश्चय बाबा के एक एक बोल पर है, बाबा के एक एक महावाक्य पर मुझ आत्मा का संपूर्ण निश्चय है। या क्वेश्चन उठता है, ये कैसे होगा, ये तो असंभव लगता है। आज जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मरे तो सारी दुनिया मर गई, तुम्हारा इस दुनिया में जन्म नहीं होगा। अब हमारे आजू बाजू जो बैठे थे सबके प्रश्न उठ गए कि अभी तक जिन्होंने शरीर छोड़ा हो तो इसी दुनिया में जन्म ले लिया, कहा किसी का वो मरे तो दुनिया मर गई। लेकिन बाबा ने तो हमारी लास्ट स्टेज की बात कही है कि जब अंतिम समय में विनाश होगा, आप जब ये शरीर छोड़ेंगे, अभी तो पार्ट चल रहे हैं ना, शरीर छोड़ा नहीं हमने, जो आत्माएं गई हैं वो शरीर जो भी लिया है वो केवल सेवा के लिए लिया है, वो सेवा का जन्म है, ध्यान रखना। क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है कि शरीर छोड़ के तो यही जन्म लिया, लेकिन वो सेवा का जन्म लेकर के बाबा के कार्य को पूर्ण करने के लिए गई हैं। लेकिन वो मरी, माना इस सृष्टि से मरी, तो वो वहां जाएंगे और इस सृष्टि का अंत होगा। तो ऐसे बाबा के महावाक्य जो चलते हैं, कई बुद्धिमान बच्चे अपनी बुद्धि जो यूज करते हैं उनके कई प्रश्न उठ जाते हैं। इसलिए मेरा ये प्रश्न है कि बाबा के किसी भी महावाक्य में संशय के संकल्प उत्पन्न तो नहीं होते। मेरा संपूर्ण निश्चय है बाबा के एक एक बोल पर, जो कुछ बाबा ने बोला वो सत्य वचन है। भले बोला बच्चे दीवार गिर गई, गिर जाएगी, और नहीं गिरी तो भी इसमें कुछ कल्याण होगा, मुझे संशय नहीं उठाना क्यों नहीं गिरी, क्यों नहीं गिरी है, नहीं ठीक है बाबा ने कहा ना, ठीक है हो जाएगा, कोई कारण होगा इसलिए बाबा ने कहा, कोई बात होगी इसलिए कहा, उसमें हम कुछ राज समझ लें तो बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति अच्छी रहेगी। इसलिए बाबा ने जो कुछ वचन उच्चारण किए हैं, सत्य भगवान के महावाक्य हैं, उसमें मुझे कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं है। अगर ऐसा है तो इस प्रश्न का उत्तर मैं हाँ और ना लिख सकता। तीसरा प्रश्न है, बाबा का जो पार्ट जैसा चल रहा है, वो बिल्कुल यथार्थ और एक्यूरेट है, उसमें मुझे कोई संशय नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कितना भी बहकाने का प्रयास करे, कोई कितना भी गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करे, कोई कितना भी इसमें करेक्शन करे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा, अभी तो बाबा ब्रह्मा बाबा आता है, शिव बाबा आ ही नहीं सकता, कई प्रकार के दुनिया के अंदर मन गणत बातें हैं, लेकिन बाबा का जो पार्ट मधुबन में चल रहा है, जैसा चल रहा है, जो बाबा कर रहा है, वो बिल्कुल यथार्थ है, मुझे 100% उसमें निश्चय है, ऐसा बाबा के पार्ट में मेरा विश्वास कितना है। कई आत्माएं इसमें डगमग हो जाती है। जैसे अभी दादी अचानक बीमार पड़ गई, तो पता क्या क्या क्वेश्चन लोगों ने पूछे, बाबा ने पहले से क्यों डेट दी थी, बाबा को अगर नहीं आना था तो बाबा को पहले से बताना चाहिए था। अब बाबा के ही प्रोग्राम में बाबा को करेक्शन करने लगे लोग, बहुत सारे प्रश्न किए। बाबा दो बार नहीं आया तो दो बार में कई कच्चे पक्के ब्राह्मणों के अंदर सैकड़ों प्रश्न उठ गए। ठीक है, इसमें भी कुछ राज था, इसमें भी कोई कल्याण है। हम अपने प्रश्न तो नहीं उठाते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े। ये बात चेक करो, बाबा जैसा पाठ बजा रहा है, जैसे कर रहा है, जो कर रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें मेरा कोई संकल्प नहीं चलता, मैं अपनी बुद्धि को इसमें बिल्कुल स्थिर रखता हूँ, मैं बाबा के पाठ को साक्षी होके देख रहा हूँ क्या बाबा करा रहा है, करण करावन हार की लीला चल रही है। ये दृष्टिकोण लेकर के मेरा बाबा के पाठ में कोई भी प्रकार का प्रश्न तो नहीं उठता है। आज अव्यक्त पाठ है, पहले साकार में था, उसके पहले संदेशियों के द्वारा कितने पाठ चले, और फिर बाबा लास्ट में किस तरह से पाठ बजाएगा अंत समय में, जैसे बजाए बाबा के पाठ को मैं देखते हुए निश्चय बुद्धि होकर के, भगवान का ही पाठ है, उसका ये कर्तव्य चल रहा है, जब तक स्थापना नहीं हुई तब तक वो अपना कर्तव्य करता रहेगा, चाहे जिस रीति से करे, क्या ये मुझे संपूर्ण निश्चय है? है, लिखो सब अपनी डायरी में है तो हाँ, अगर कुछ संशय है तो लिखो परसेंटेज के अंदर। फिर लास्ट प्रश्न है, क्या मुझे अपने परिवार, इस अलौकिक परिवार में, अपनी बहनों में, अपने बड़ों में संपूर्ण निश्चय है कि ये बहुत पवित्र और योगी आत्माएं, ये भगवान के चुने हुए अनन्य रत्न, भगवान ने इनको सीट दी है, ये भगवान के राइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर आत्मा का विशेष पार्ट है और ये संगठन विशेष आत्माओं का संगठन है, हर आत्मा विशेष है इस संगठन में, कोई कैसी भी हो, भले कोई संस्कार हो, कोई कमी हो, कोई कमजोरी हो, लेकिन चेक करो क्या इस ब्राह्मण परिवार के हर पार्टधारी में मुझ आत्मा का संपूर्ण निश्चय है और हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावनाएं हैं। अब एक लास्ट प्रश्न देता हूँ, उससे 10 हो गए हैं, लेकिन एक लास्ट प्रश्न है जिसके लिए बाबा की विशेष प्रेरणा रहती है। स्वराज्य अधिकारी स्थिति मेरी बनी है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति मेरी बनी है, या मैं राजा अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को अपने आर्डर प्रमाण चलाता हूँ, कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती, मन मेरा कहना मानता है, बुद्धि समय पर ठीक निर्णय करती है, संस्कार मेरे शीतल सरल पवित्र बने हैं, ये स्थूल शरीर की सब कर्म इंद्रियां, आंख नाक मुख कान हाथ, ये सब ऑर्गन्स मेरे कंट्रोल में हैं, सब मुझ आत्मा का कहना मानते हैं, या परवश स्थिति बन जाती है। रोज दरबार लगाना अपने, बाबा कहता रोज दरबार लगाओ, कभी आंख धोखा देती, कभी मुख धोखा देता, कभी कान धोखा देते, कभी हाथ धोखा देते, कभी पांव गलत रास्ते पर चले जाते, कभी मन नहीं कहना मानता, कभी बुद्धि ठीक समय पर काम नहीं करती, कभी संस्कार परेशान करते। योगी माना राजा, और बाबा कहता है तुम मेरे राजा बेटे हो, राजा बेटे, तो हे राजा अपने दरबार देखो, आपके सब कर्मचारी, मुख्यमंत्री, सहायक मंत्री, हर एक आपके कंट्रोल में है, या मुझे ही परेशान करें, राजा को उतार देते गद्दी से, अपना राज्य कहने लगते हैं। चेक करो, चेंज करो, संकल्प करो। ये जो 11 प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों में अभी कितनी कमी है जो मुझे भरनी है, तब मैं बाबा के समान बनूंगा, ऐसे नहीं बन जाऊंगा सीधे। अगर ये सब कमियां भरपूर हो गई ना, 100% तक आ गए, तो बाबा कहेगा ये मेरा बच्चा मेरे समान बन गया। जो समझते हैं इस सभा के अंदर मेरा 60 से 80% के बीच में मार्क्स है, वो हाथ उठाओ। देखना 60 से 80 जिन्होंने लिखा है अपनी डायरी में, 60 से 80 के बीच में मेरे हैं। अच्छा, इसके ऊपर वाले भी हैं कोई? 80 के ऊपर वाले नहीं है कोई भी? तो सब 60 के नीचे वाले जो हैं वो सब हैं कहेंगे है? गैस मार्क तो नहीं है ना, ऐसा नहीं खास आपको दे के पास करना पड़ेगा, सब पास हो जाना। 33 के ऊपर तो होने चाहिए ना सबके, लेकिन डिवीजन अगर अच्छी चाहिए तो 70-80 होने चाहिए, नहीं तो डिवीजन डाउन हो जाएगी। बाबा कहता है 108 की माला में अगर आप आ गए तो मैं लड़ियां बढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करो। विष्णु के गले में कई लड़ियों की माला होती है ना, तो ऐसे नहीं सोचो 108 तो पूरे बन गए होंगे, हम भी आ सकते हैं, अगर एक माला नहीं तो दूसरी पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम भी बाबा के बच्चे रेस करें, और इसमें कोई भी मार्क्स जिसमें कम दिखाई देती है उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करो, उसके लिए थोड़ी मेहनत, दृढ़ता का संकल्प, मेहनत और कुछ नहीं, संकल्प में दृढ़ता आएगी तो अपने आप पार हो जाएगा। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, सबसे बड़ी बीमारी दो हैं संसार में, फैल रही है फास्ट गति से, बच्चे बच्चे आते हैं ना छोटे छोटे, हार्ट अटैक, इनकी आर्टरी बंद हो गई, टेंशन, और वो बीमारी ब्राह्मणों में है दिल शिकस्त। छोटी सी बात हो गई, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मेरा तो योग ही ठीक नहीं है, मेरा तो सफलता ही नहीं मिलती है, हार्ट की बीमारी है, उमंग उत्साह कम हो गया, नसें रुक गई, ब्लड ग्रुप फैलना बंद हो गया। तो इसलिए चेक करना, मैं दिल शिकस्त की बीमारी से ग्रसित तो नहीं हूं, ठीक है, हार्ट की बीमारी की दवाई करा लेना। कभी भी निराश उदास नहीं होना, जिसका साथी स्वयं भगवान है उसका आंधी और तूफान क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कभी निराश उदास तो होना ही नहीं, रोज नया संकल्प करो, रोज नया नया संकल्प करके उमंग उत्साह में आ जाओ, बहुत अच्छी तरह से रोज नवीनता से पुरसारत। आज अच्छा योग नहीं लगा मान लो, मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास तो नहीं छोड़ो ना भाई, मेरे तो अमृत वेले रोज नींद आती है, तो सो जाओ ना बिस्तर में। ऐसा अगर करोगे तो फिर आलस्य आ जाएगा, घेर लेगी माया। चलो आज नहीं लगा कोई बात नहीं, आज नए ढंग से करेंगे, आज कोई अच्छा गीत बजाएंगे, आज कुछ अच्छा कमेंट्री लगा देंगे, आज कोई अनेक अलग प्रकार से योग करेंगे, चलो बाबा से आज मीठी मीठी बातें करेंगे, आज और कुछ नहीं, आज वरदान पर आज चिंतन करेंगे, आज चलो बाबा के पास बैठ करके सभा को सारी दुनिया को सकास देंगे। अरे कोई नवीनता कर लो, मजा आ जाएगा, लेकिन संकल्प को नवीनता से करोगे ना तो योग अच्छा होगा। अगर नवीनता नहीं है, रोज शांत स्वरूप होके बैठोगे, यही योग है, तो नींद आती है रोज। शांत स्वरूप हूं तो प्रेम स्वरूप भी हूं, तो आनंद स्वरूप भी हूं, तो शक्ति स्वरूप भी हूं, सब तो मेरे ही स्वरूप है ना। तो नवीनता जहां है वहां पर उदासी नहीं आ सकती, कभी निराशा आ ही नहीं सकती। तो रोज नया नया संकल्प करके अमृत वेला करो, मुरली क्लास करो, मुरली में भी कोई नई चीज ढूंढो, आज बाबा ने नया क्या सुनाया, आज बाबा ने किस तरह से हमको आज प्रेरणा दी, मजा आएगा। तो एक दिल शिकस्त की बीमारी बहुत बड़ी है हार्ट की, और दूसरी देखो कैंसर कैसा फैल रहा है, पता ही नहीं चलता, लास्ट स्टेज हो गई इसकी, अब मरने पर आ गया तो पता चलता यहाँ दर्द हुआ, यहाँ गांठ है, अब क्या फायदा उस समय। और वो है बहम और अहम। अगर ये दो बीमारियां किसी को हो गई, बहम माना परिवार में ये जो बात करती ना, पता नहीं इसका इसके साथ क्या संबंध है, मेरा पति है ना बार बार बहनों के पास जाता, उसका पता नहीं कुछ है तो नहीं, ये क्या है? ये सबसे बड़ा कैंसर का रोग है। अगर इस प्रकार का कोई संकल्प कर लिया ना नेगेटिव, तो शांति नहीं रहेगी, सुख नहीं आएगा। हर एक आत्मा में विश्वास रखो, अपने में विश्वास, दूसरों में विश्वास, कभी भी बहम नहीं करना, नहीं तो कैंसर अंदर अंदर घुन लग जाता ना, घुन पता नहीं चलता है, सारा खा के खत्म कर देता। आप कहेंगे मेरे पास बहुत अनाज का स्टॉक रखा है, चेक नहीं किया और घुन उसके अंदर लग गया, और जब खोलोगे तो क्या होगा? खोखला, ऊपर ऊपर दिखाई देगा बहुत है और अंदर कुछ नहीं, खा गया। तो ये दीमक जो है ना कैंसर की, बहम वालों को बहुत जल्दी खत्म कर देते, अंदर अंदर खोखला कर देते, खुशी नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, निश्चय नहीं, सब अंदर अंदर डाउन हो जाता है। फलाना फलाने के साथ क्यों इतना बातें करता है, क्यों उसके पास बार बार जाता है, क्या इसका है, ऐसे ऐसे संकल्प करके और अपने मन को दुखी कर लेते। जो कर रहा हर आत्मा का पार्ट है, मैं अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजाऊं, मेरे ऊपर कोई शक शंका नहीं करे, अगर करता है तो मैं अपनी सफाई से सच्चाई से अगर चलूंगी तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने को डिस्टर्ब नहीं करो कोई छोटी बातों में, ठीक है? तो ये अनुमान की बीमारी, बहम की बीमारी, कैंसर की बीमारी। और दूसरा, कभी कुछ कर लेता है ना, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो पैसे से इतना सहयोगी हूं, मैं नहीं करता तो यज्ञ नहीं चलता, मैं नहीं करता तो सेंटर नहीं बनता, मैंपन अंदर अंदर आ गया। और कहीं थोड़ी कोई बात हो गई छोटी ऊपर तो क्या होगा? मेरा तो यहाँ अपमान होता है, मेरी तो कोई यहाँ इज्जत ही नहीं, मैं इतना करता हूँ मेरे कोई जानता ही नहीं, मेरे को बड़े भी नहीं पहचानते। ये कौन सी बीमारी हुई? ये भी एक अहम का कैंसर है, अंदर अंदर सूक्ष्म में, जो अंदर अंदर शक्ति को खत्म कर देता। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी ऐसी बीमारियों में चक्कर में नहीं आ जाना, बच के रहना, ठीक है? और अगर चेक नहीं कर सकते हो तो बीच बीच में चेक करा लेना, तो आज चेक करो अच्छी तरह से। और कोई भी बीमारी ऐसी सूक्ष्म हो, बाबा को लिख करके बाबा के बॉक्स में डाल देना, ठीक है? आज चेक कर लिया ना, अभी यहाँ से उठ करके कमरे में जाना खाने के बाद, और कोई भी ऐसी कमी कमजोरी संस्कार स्वभाव आदत हो, बहुत प्यार से बाबा को प्रेम पत्र लिखना, और प्रेम पत्र लिख करके बाबा को कहना, बाबा ये आप ले लो और मुझे अपनी शक्ति दे दो बस, ठीक है? तो बाबा के कमरे में आज बॉक्स के अंदर सब लिख के डाल दे। चलो ओम शांति, ठीक पूरा कर 10 मिनट योग करके, 5 मिनट योग करके, 5 मिनट योग करके फिर सभी अभी अपने आप भ्रकुटी आसन पर बैठ के शरीर स्थिति का अभ्यास करना, आंख बंद करके नहीं बैठना।
सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रकुटि बीच दरबार अपना सजाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी बीच दरबार अपना सजाएं। I'm gonna make it।